अज्ञानग्रन्थस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्राप्रजन्तं तेतमपेतदित्यं द्वैपायनो विरहः कोऽस्त्रेति तन्मयतया सर्वोऽपि तं सर्वभूतैरयं मन्मानतु त्वैवास्मि त्वमिदं त्वया विना इति मैं पहले दिन से ही भक्ति के तारतम्य से भक्तों के तारतम्य पर विचार कर रहा हूं। पहले मैं दुआ की बात बतलाई, वैष्णु तो भक्ति के अंतर्गत नहीं है, सकाम भक्त है इसलिए छोड़ना। तत्पश्चात ज्ञानी भक्त प्रहलाद महाराज भीष्म इत्यादि के संबंध में बतलाए। उसके बाद में साधन भक्तों में शुद्ध भक्त में अम्बरीश महाराज की बात बतलाई, और उसके बाद में कल हमने प्रेमी भक्त हनुमान जी के संबंध में बताया। वो बिना भगवान की सेवा किए हुए एक क्षण भी जीवित नहीं रहते, कल उनके संबंध में कुछ हमने बताया। अब आज मैं उससे भी कुछ श्रेष्ठ भक्तों के तारतम्य पर विचार कर रहा हूं। जो लोग प्रेम पर भक्त हैं अर्थात अपने प्रेम से भगवान को भी वशीभूत कर लिया है, हनुमान जी की सेवा से भगवान रामचंद्र जी या कृष्ण ही कहो एक ही तत्व प्रसन्न है, जो प्रसन्न है उनकी सेवा ग्रहण करते हैं, किंतु वशीभूत नहीं हो, इसलिए हनुमान जी को दास्य भक्त कहा गया है। वो सेवक है रामचंद्र जी के, सेवक कभी भी प्रभु के साथ में एक आसन पर बैठ नहीं सकता, खाने के समय में एक थाली में भोजन नहीं कर सकता, उनके प्रति सब समय आदर का भाव रहेगा, स्वामी और दास का संबंध रहेगा। तो जो लोग हनुमान जैसे भगवान की सेवा करते हैं बहुत अच्छी बात है, किंतु उससे भी कुछ श्रेष्ठ बातें हैं जहाँ पर कोई भगवान भी प्रेम के वशीभूत होकर के उन भक्तों की भी सेवा स्वयं करने लगते हैं। ऐसे एक समय नारद जी वीणा बजाते थे, भगवान के विशेष कृपा पात्र को ढूंढते हुए खोज रहे थे, शंकर जी के पास में गए, बोले आप तो सगन का ज्ञानी हैं और भक्ति भक्तों के भी आप गुरु सदृश है। भक्तों में भी चूड़ामणि है। आप मुझे बतलाइए कि संसार में भगवान का कृपा पात्र कौन है, और यदि भगवान का कोई कृपा पात्र जानना चाहते हो अभी चले जाओ इंद्र प्रस्थ में और वहां जाकर के देखो। कहां जाऊंगा? जाना अर्जुन के राजभवन। ठीक, बिना बजाते हुए चले गए और वहां उन्होंने जो देखा वो अपना बिना बजाना भी भूल गया। और देखा क्या? अर्जुन और कृष्ण द्रौपदी के राजभवन में महल में एक ही पलंग पर सो रहे हैं। कैसे सो रहे हैं? जिधर कृष्ण का शीर है उधर अर्जुन का पैर है, और जहां अर्जुन का शीर है वहां कृष्ण का पैर। अर्जुन ने कृष्ण के चरणों को अपने छाती से लेकर माने गोदी में लेकर के इधर में कर रखा है, और कृष्ण अर्जुन के पैर को अपने हस्ताक्षर पर रखकर और वो सो रहे हैं। और अर्जुन के मुख से रोम रोम से ये निकल रहा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एक तरफ में सुभद्रा जी और द्रौपदी जी कृष्ण के चरणों को विजन कर रही है पंखे से उसको पलोट दे, और दूसरी ओर यश कौन सत्यभामा मां रुक्मिणी इत्यादि रानियां भी उनके साथ में आई थी। वो लोग अर्जुन की पैरों की तरफ में उसको पंखा इत्यादि झल गई थी। अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण देखकर के बिना बजाना भूल गए और बस अर्जुन अर्जुन कह करके रट लगाने लगे और नृत्य करने लगे। तो ऐसे कृष्ण के भक्त पांडव लोग एक से एक हैं। युधिष्ठिर महाराज तो नहीं है, उनसे अधिक श्रेष्ठ भीम है, उनसे भी अधिक श्रेष्ठ द्रौपदी जी है, और उनसे भी अधिक कृष्ण की प्राण सखी द्रौपदी सखी कहते थे, मेरी सखी सहेली बहन से भी अधिक श्रेष्ठ उनको पद दे। तो ये कृष्ण किस तरह से सेवा करते हैं पांडवों की? महाभारत के युद्ध में कृष्ण अर्जुन का रथ चलाते हैं, और किस लिए रथ चलाते हैं? एक समय कृष्ण द्वारकापुरी में सो रहे थे, दुर्योधन उनको अपनी तरफ से युद्ध में निमंत्रण करने के लिए वहां गया। कृष्ण उसके समधी है, अर्थात दुर्योधन की बेटी से कृष्ण के पुत्र की शादी हुई। उसने सोचा ये कृष्ण तो हमारे समधी है, उनसे बड़े तो है नहीं, समधी मैंने बराबर है, इसलिए उनके सिर की तरफ में बैठ गया। और पीछे से अर्जुन आए उनको युद्ध के लिए अपनी ओर से निमंत्रण देने के लिए, तो वो पैरों की तरफ में बैठे दिन ही नहीं थोड़ी देर के बाद में कृष्ण जगे, शिव शिव कहते हुए तो सीधा ऐसे उठे, पीछे में दुर्योधन दिखलाई नहीं दिया। अरे सखा अर्जुन तुम कब आए? तुम कब आए? मैं तो थोड़ी देर हुई अभी आया। दुर्योधन पीछे से बोले अरे कृष्ण जी मैं इनसे भी पहले आया हूं, इसलिए पहले मेरी बात सुन करके तब उनकी बात सुननी पड़ेगी। तो उन्होंने पीछे मुड़ करके वो आप आए हैं बैठे नमस्कार उनको किया, अर्जुन को नमस्कार इत्यादि नहीं किया, बैठे कहिए क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप महाभारत युद्ध होगा ही वो टल नहीं सकते, इसलिए आप हमारी तरफ से युद्ध करें अपनी सेनाओं के साथ। कृष्ण ने कहा कि ठीक है अर्जुन और तुम दोनों एक ही बात के लिए आए, तो पहले तुम्हारी बात सुन करके तुमको माले उत्तर कर दे करके तुम जो चाहो विवाह करके और तब फिर अर्जुन की बात सुन, तो तुम क्या चाहते हो आप हमारे तरफ से युद्ध करो। अच्छा एक बात है, मैं यदि हमको लेना चाहते हो अपनी ओर तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, और हमारी चतुरंगणी सेना उसके सेनापति इत्यादि जितने हैं वो लोग युद्ध करेंगे, तो इन दोनों में से किसी एक को लो, या तो हमको लो मैं युद्ध नहीं करूंगा, या तो ये चतुरंगणी सेना को लो तुम्हारी तरफ से युद्ध करेंगे। दुर्योधन ने कुछ सोच विचार करके कहा यदि आप निठल्ले बैठे रहेंगे तो आपको लेकर के क्या होगा, आपको तो खिलाना पिलाना और भी तो हमको करना पड़ेगा, और आप युद्ध करेंगे नहीं तो बेहतर यह है कि आप चतुरंगी सेना उसके सारे सेनापतियों को मैं हथियार के आप मुझे दे। ये सुनकर के कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने आज्ञा दिया कि चतुरंगी सेना को आज ही आप लोग कुरुक्षेत्र के लिए दुर्योधन की तरफ से लड़ने के लिए प्रस्तुत होकर के रवाना हुए यात्रा की। जब वो चले गए दुर्योधन खूब खुश होकर के, तो अर्जुन बोले ये प्रभु आज आपने मेरी रक्षा कर दी, मैं तो मर ही जाता, मुझे चतुरंगिणी सेना की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत ना आपकी जरूरत, आप हमारे मनोरथ पर बैठ करके मुझे गुरु की भांति शिक्षा दीजिए, ये क्या करनी चाहिए, आपकी इच्छा से ही तो प्रलय और सब कुछ हो जाए, इसलिए आप हमारे रथ के ऊपर में बैठेंगे मनोरथ पर भी बैठेंगे। कृष्ण बोलिए ठीक है किंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब कुछ युद्ध करने की क्या जरूरत है, कोई युद्ध करने की जरूरत है, युद्ध तो मैं करूंगा, आप हमारे रथ पर चुपचाप बैठे। बात तय हो गई, अर्जुन बड़े आकर्षण हुए और कृष्ण को लेकर के चले। अब महाभारत युद्ध होने वाला था, इधर में क्या हुआ, एक दिन एक बड़ी नदी के किनारे यमुना नदी के किनारे उसमें पानी लबालब भरा हुआ था, कृष्ण अर्जुन को लेकर कहीं जा रहे थे, चलो जरा घूम आए, वहां पर देखा यमुना के किनारे देखा क्या, कृष्ण ने अकेले अर्जुन को नदी से पानी लाने के लिए पीने के लिए मंगवाना था, उन्होंने कहा जरा पानी लाओ और अपने जरा उस नदी से दूर पर खड़े हो गए। अर्जुन वहां पहुंचे देखा जी विराट बंदर बैठा हुआ है, अजय तुम कौन हो, तो लोग मुझे हनुमान कहते हैं, ओह वही हनुमान, आप वही हनुमान हैं जो रामचंद्र इतना दुर्बल था कि समुद्र के ऊपर उतर नहीं पा सका, और फिर बंदरों की और फालुओं की सहायता से जब पुल बना उससे लोग पार हो सकते, मैं यदि रहता ना तो दिखला देता, तो मैं बाणों से ऐसा पुल बांध देता जो एक सेकंड के अंतर में सभी लोग पार हो जाते। तुम वही हनुमान हो जो रामचंद्र जी की सेवा करते हो, तो उन्होंने कहा मैं वैसे राम का सेवक नहीं हूं, मैं विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले इच्छा मात्र से ही जगत का प्रलय करने वाले मन ही मन में रावण का वध करने वाले उनका संहार करने वाले राम का मैं सेवक हूं, तुम कहते हो कि हम बाण से नदी को बांध देंगे पुल बना देंगे, अच्छा तो तुम बांधो तो देखें जो मेरा भार सह सकता है कि नहीं, अगले देखो बस उन्होंने बांट दिया और एक सेकंड के अंतर्गत में आवाहन करके मंत्र से वज्र जैसा फूल जमुना के ऊपर में बांध दिया। हनुमान ने सोचा कि से ये साधारण तो आदमी है नहीं, फूल को तोड़ना किसी प्रकार से हमें चाहिए। इसने एक लंप देकर कूद कर हिमालय में पहुंचे, विराट शरीर बनाया और अपने रोम रोम में बड़े बड़े पत्थरों को बांध लिया अपने रोम रोम और हाथों पर एकदम बड़े बड़े पत्थरों की शिलाएं, एक पर्वत को ही इधर और उधर लेकर के कूद करके बस वहां। अब देखा अर्जुन, अब तो ये पूरी बचेगा, ये सारे ब्रह्मांड का भाग लेकर के इस पर एक कर रखने से ये टूट जाएगा। हे कृष्ण चंद्र मेरी रक्षा करो, मैं आपके शरण। और ये हनुमान जी सोचे ये शरीर टूटने वाला पुण्य है, यदि मैंने पैर रखा और टूटा नहीं तो मेरी तो बदनामी हो गया, हमारे प्रभु रामचंद्र जी की बदनामी हो। ऐसा सोच करके रामचंद्र जी के शरणागत, हे राम मेरी रक्षा कर, मेरी लाज आपके हाथों में है। ऐसा कर करके एक पैर, अगला दाहिना पैर उनके ऊपर रखा। देखा जी तो कुछ हुआ नहीं, टस से मस पुल का कुछ बिगड़ा नहीं, पर थोड़ा सा अपना पिछला पैर उठा करके पूरा भार देना चाहते थे। इतने में देखा पुल के नीचे से जमुना में रक्त की धारा बह रही, रक्त बह रहा। जी कहां से आया? हनुमान जी गए और उतर करके झुक करके देखा, रामचंद्र उसके नीचे अपनी पीठ लगा दी और भार के अधिक होने से उनके मुख से रक्त। अर्जुन ने देखा कि ये कैसे रक्त आया, उन्होंने देखा कि कृष्ण ने अपनी पीठ लगा दी है। एक ही चीज को वो अपने रूप में देखते हैं, उन्होंने देखा कि कृष्ण अपनी पीठ लगा दिए हैं और भार अधिक होने से ये मुझसे रक्त। बस झट उधर रामचंद्र जी को उन्होंने प्रणाम किया, राम को देखा और उन्होंने उन्हीं को कृष्ण देखा और हम लोग करके खड़े। उस समय में कृष्ण प्रकट हुए, राम को अंतर ध्यान हो गया और उन्होंने कहा, देखो मैं कृष्ण हूं, महाभारत का युद्ध होगा, मैं अर्जुन का रथ हांकूंगा और तुम हनुमान जानते हो कि मैं कौन हूं ना, का जाप राम हूं, तो मेरी आज्ञा से मैं उसका सेवक बन रहा हूं और तुम भी अपनी पूरी शक्ति से उसके रथ के पताके ऊपर में बैठ जाना। अब जब कभी कभी कर्ण भीम भीष्म इत्यादि के बाण आएंगे जिसको अर्जुन सह न सके, तुम ऐसा गर्जन करना कि उनका लक्ष्य इधर उधर हो वो बाण ही। और कभी कभी जरूरत पड़ने से अर्जुन का रथ एकदम नीचे दबा देना मिट्टी में, जो उनका बाण कुछ असर। इस प्रकार से जब जब मैं जैसी इच्छा करूं वैसा करना, तुम ये मत समझना कि यह अर्जुन की मेरी सेवा समझ कर, यहाँ पर मैं ही जिस भक्त की सेवा कर रहा हूं इसलिए तुमको जरूर कर पूछा। तब दोनों में दोस्ती करा दिया और तब से हनुमान जी अर्जुन के ध्वजा पर बैठते गदा लेकर, अब जब जरूर पड़ते तो जोर से गर्जन करते थे। गर्जन करने से बस शत्रु का लक्ष्य भेद हो जाता। ये हम लोग पुरी में गए थे, जाते रहते हैं, वहां पर सुना कि एक बेड़ी हनुमान तो देखने के लिए गया दर्शन करने, तो वो समुद्र तट पर भी हनुमान जी गदा लेकर के वहां पर है और बेड़ी और हथकड़ी उनकी लगी हुई है। क्यों? मैंने पूछा कि क्यों भाई? तो यहाँ पर समुद्र गर्जन करता है और हनुमान जी को जगन्नाथ जी ने रखा, समुद्र जब इधर में आने की कोशिश करे तो गर्जन करना, जो समुद्र पीछे हट गया। किंतु कभी कभी उनको दशरथ नंदन या अयोध्या धाम की याद आती है, राम की सेवा करने के लिए एक छलांग करते ही वहां पर पहुंच जाते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी ने देखा कि से ये तो वहां पर कभी कभी चला जाता है और इसी बीच में समुद्र आए तो क्या होगा, इसलिए हथकड़ी और बेड़ी पहना करके रखो जा रखो यही करो। हनुमान जी कैसे भगवान की सेवा, उनको भी पांडवों की सेवा में लगा। ऐसे जब रथ में रथ चलता है उसमें बड़े प्यासे हो जाते हैं, उनसे रथ से खोल करके उनको खुद ही पानी पिलाते हैं, कभी खुद ही घोड़ों का पैर कृष्ण दबाने लगते हैं। अर्जुन का तो पैर की बात, घोड़े थक जाने पर ना, आप लोगों ने देखा है तो घोड़सवार जो होता है वो घोड़ों के पैरों को दबाता है और उनके केश यहाँ पर वो एक रखता है, उसे ऐसे ऐसे जो उसकी थकाऊ। तो अर्जुन की तो व्याख्या उनके घोड़ों को भी पैर दबाते थे कृष्ण, उनको खिलाते थे दाना घास इत्यादि, ऐसी सेवा। कितने बड़े सेवक हैं किसी से समझो। जे कृष्ण अपनी प्रिय बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन से, अपनी बहन को देना साधारण बात नहीं है, उनका साला बन जाना। कृष्ण साले बन गए, अर्जुन को क्या बनाया? अपनी पति बहन हुई बना दिया। इस लौकिक लीला में कैसे बनाया इसका भी एक इतिहास है। अर्जुन बड़े सुंदर थे, कृष्ण के समान ही सांवले रंग के थे, बहुत खूबसूरत। वे कृष्ण के परम मित्र थे, वह द्वारका आया जाया करते। जब सुभद्रा जी ब्याह देने लायक हुई तो इनका पर सब लोग ढूंढने लगे और बलदेव जी ने देख सुन करके मन ही मन में विचार किया कि मैं अपने शिष्य दुर्योधन से इसकी शादी करूं और कृष्ण वसुदेव की देवकी और जितने जादव लोग थे द्वारका के, उन्होंने समझा कि ये तो उससे शादी करेंगे, इसलिए डर के मारे कुछ बलदेव जी से सभी डरते हैं इसलिए कोई विचार प्रकट न कर सके, किंतु मन ही मन चाहने लगे ये दुर्योधन दैत्यदान हो, इसे मेरे कोमल बहन की शादी हो। कृष्ण तो अच्छी तरह से समझते और वो जान चाहते थे हमारी प्यारी बहन का कि शादी हमारे प्रिय भक्त अर्जुन के साथ। एक दिन अर्जुन कृष्ण से मिले और कुछ एकांत में बातें हुई और बात होने के बाद में अर्जुन ने क्या किया, अपना यह देश छोड़ करके क्षत्रिय का, हम लोगों जैसा त्रिदंड वेश, कपड़े भी नहीं दंड लिया और एक मात्र सिर मुंडन करा लिया, गले में तुलसी और तिलक भी लगा लिया और सन्यासी बन करके समुद्र के किनारे द्वारकापुरी में अपना भजन कर दिया। सबसे पहले कृष्ण गए उनके पास, महात्मा जी हमारे ऊपर ने कृपा करा, अजय हो मस्तु तुम्हारी मन काम मत। कृष्ण ने द्वारका आकर के सब लोग सा एक सिद्ध महात्मा आया पाव सिद्ध महात्मा, सब लोग उनके दर्शनों के लिए जाने लगे, यहाँ तक कि बलदेव भी उनका दर्शन करने आए। थोड़े दिन के बाद ही में कुछ दिनों के बाद में सबका जब विश्वास हो गया कि ये महासिद्ध योगी सन्यासी है, तो कृष्ण ने अपनी बहन को उनके पास में भेजा। वो 16 श्रृंगारों से आभरणों से सज्जित होकर उस नए सन्यासी के पास मिल गई। वहां जाने पर अर्जुन ने उनको देखा और उन्होंने सुभद्रा जी ने कृष्ण को अर्जुन को देखा और फिर वो बातों बात में वो समझ गई। अर्जुन ने इशारा किया जिस रथ पर चढ़ करके सुभद्रा जी देवी का पूजन करने आई थी उसी रथ पर अर्जुन चढ़ गए और द्रौपदी भी रथ को चलाने लगी। सुभद्रा जी रथ चलाने लगी, अर्जुन धनुष बाण लेकर प्रस्तुत हो गए। कुछ सेनाएं आई और उनको अर्जुन ने अपने बाणों से उन्हें परास्त कर दिया। वे लोग बड़े डर करके और गए बलदेव जी को कहा, यह आपकी बहन का हरण हो रहा है, अब हरण कर लिया। ये अर्जुन था, ये योगी और सन्यासी नहीं था। यह सुनकर के बलदेव जी को बड़ा क्रोध, वो हल और कुशल धारण करके अर्जुन को मारने के लिए दौड़े। कृष्ण ने कहा कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं, बड़े पेट से जा रहे हैं, बात क्या है, हल कुशल भी लिया है बड़े क्रोध में, हमारी बहन का अपहरण कर लिया, तुम्हारी बहन का अपहरण किया, तुमको पता नहीं है, आज तुम उसे मार करके रहेंगे। उन्होंने कहा ये तो क्षत्रियों का काम है, क्षत्रिय लोग ऐसे ही करते हैं, मैंने भी तो रुक्मिणी का ऐसे ही अपहरण करके लाया था बीच सेनाओं से, ये तो क्षत्रिय वीर पुरुष ऐसा करते हैं। और सांब ने दुर्योधन की लड़की लक्ष्मणा जी को उनके सेनाओं के भीतर से अपहरण करके वो लाया और उसको लोगों ने कैद कर लिया। उस समय आप ही उसको छुड़ाने के लिए गए, बोले जैसे इस जमुनापुर में वो हस्तिनापुर को लेकर के डुबा दूंगा, आप क्यों गए, आपने अनुमोदन दोनों का किया, इसका मेरी रुक्मिणी हरण का भी और सांप के हरण के लिए दोनों को आपने अनुमोदन किया, सहानुभूति की और उनकी रक्षा की, तो यहाँ पर अर्जुन की रक्षा क्यों नहीं कर रहे, इसने तो विरोचित काम किया है, क्षत्रियोचित। पहले हमको क्यों नहीं बतलाया, तुम की इच्छा भी ऐसी क्यों नहीं बतलाया। कृष्ण मुस्कुराने लगे, बलदेव जी का क्रोध शांत हो गया। कृष्ण ने कहा इसको निमंत्रण दीजिए अर्जुन को, जो सुभद्रा के साथ राजभवन में आया इसकी विधिवत शादी अब की जाए। फिर विधिवत शादी, देखो भक्तों के प्रति, हाँ जिस समय अर्जुन भगा ले जा रहे थे तो कृष्ण ने कहा कि देखो तो ये सुभद्रा रथ चला रही है, ये सुभद्रा ही तो अर्जुन को हरण कर रही है, अपहरण अर्जुन तो अपहरण नहीं करा रहा। इस तरह से कृष्ण बलदेव जी को भी शांत कर दिया और विधिवत शादी। इसलिए देखो हनुमान जी का राम से रक्त का संबंध नहीं है, समझ रहे हैं ना, उनके भाई भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, हनुमान है उनके सेवक, कोई भी कहीं से भी आकर के सेवा कर सकते, ठीक है उसे राम कृष्ण, किंतु ब्लड रिलेशन होने से संबंध होता है। इसलिए द्रौपदी सुभद्रा जी कृष्ण की बहन है रक्त संबंध, और उसके लिए पति हो गए तो अब संबंध हो गया ना, अब साले का और पहनवी का संबंध होता। इसी तरह से खजन राज्य में लौकिक संबंध होता है, एक पति अपनी पतिव्रता स्त्री के लिए लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपना घर इत्यादि सब बेच करके भी उसके लिए करेगा, अपने बेटा बेटी के लिए करेगा, दूसरों के लिए नहीं। एक सड़क पर आदमी वो एक्सीडेंट हो गया पड़ा हुआ है, वो उसको उठा करके अस्पताल में दे देगा, 10-5 रुपए खर्च तो कर देगा, किंतु तो अपनी सारी संपत्ति को बेच करके उसके लिए कुछ नहीं, ये संबंध है। इसलिए भक्त लोग कृष्ण से संबंध करते हैं, गुरु इस संबंध को देता है। गुरु परमार्थ राज्य का पिता है हम सभी का, और मंत्र मैया होती है। गुरु उसी से संबंध देते हैं कि कृष्ण के साथ में तुम्हारा क्या संबंध है, और तब कृष्ण उसकी सारी मनोकामना को अन्यथा नहीं, सुन करके भी उनको कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारी काम उनकी आवाज भी रोने की भी नहीं पहुंचेगी। इसलिए संबंध को समझ, इसलिए अर्जुन से कृष्ण का यह दैहिक भी संबंध होता। इसलिए एक थाल में खाते, एक जगह सोते पीते रहते से बात। अब एक कोई कृष्ण
बोले श्रृंदावन बिहारी राम की जय, जय जय श्री राम। करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे
Thank you. Good night. Thank you.
छल पूर्वक पांडवों का सारा राज्य जीत लिया और फिर दाव पर लगवा करके द्रौपदी को भी जीत लिया और जीतने के बाद में रजस्वला द्रौपदी को पकड़ करके सभा में लाया। दुशासन उनका केस पकड़कर घसीटते हुए लाया और दुर्योधन ने कहा और मेरे जंगे पर इसको एकदम बिल्कुल नंगी करके बैठा हो। एक दिन हमारा इसने उपहास किया, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, तो आज इसका मजा थोड़ा सा चखा ले। तो उस समय में भीष्म पितामह जी, धृतराष्ट्र, कुंती मैया और सारे परिजन उस सभा में थे। देवता लोग भी थे, नारद भी थे, किंतु कोई भी दुर्योधन को बारण नहीं कर सके, निषेध नहीं किया। ये क्या तुम कर रहे हो? यहां तक कि ये महाराजा धृतराष्ट्र सचमुच में अंधे, आंख के अंधे और बुद्धि के भी अंधे, उन्होंने मना नहीं किया, बल्कि गंधारी मैया ने मना किया। क्या कर रहे हो, ये प्रणय हो जाएगा, किंतु वो माना नहीं। दुशासन उनको राजभवन से उनको पकड़ करके जबरदस्ती खींचता ले आया और सभा के बीच में खड़ा करके उनके चीन को हर करने लगा, बस नंगी करेगा। 60,000 हाथियों का बाहुबल दुशासन के भुजाओं में था, जब खेचने लगा तो एक ही बार खेचने से ही तो कपड़े वो नंगी हो जाती चले जाते, किंतु वो खेचता बात क्या हुई। उस समय में द्रौपदी जी ने अंतःकरण से रोक करके कहा, क्यों? उसने पहले युधिष्ठिर महाराज की तरफ में देखा, अरे मेरी लाज जा रही है, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर नीचा कर दिया। विषम पितामह की तरफ में देखा, मैं आपके घर की तो कुल बहू हूं, मेरी लज्जा जा रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप चाहे तो दुर्योधन को एक सेकंड कंधे मार करके गिरा सकते। महाराज धृतराष्ट्र की तरफ देखी, कुछ नहीं बोले, सभी लोग लज्जा से नीचा कर दिया। इसके बाद में उसने भीम की तरफ देखा, तुम भी कायर की तरफ में यहाँ पर बैठे हुए हो, तुमको तनिक भी लज्जा नहीं आ रही, मानो इस तरह से कहा। भीम फड़फड़ा करके गदा लेकर के उठे, जो अभी चकना चूर कर देंगे सबको और कर सकते, किंतु महाराज युधिष्ठिर जी के कपड़े खींच करके, बैठो तुम बैठो, किस लिए? वो तो मार सकते थे, पांचों भाई यदि उसी समय धनुष बाण और अपनी गदा ले लेते तो उसको चकना चूर कर दे। युधिष्ठिर महाराज जी बड़े आज सोचते हैं कृष्ण स्वयं आए और उसकी रक्षा करे, और हम ही लोग लड़ने लगे रहे तो कृष्ण आएंगे नहीं, रक्षा नहीं करेंगे, इसलिए ऐसा सोच करके, अरे बैठो, मुझे क्यों बैठे, बैठो मैं कह रहा हूं पीछे समझो। तब द्रौपदी जी ने देखा अर्जुन की तरफ, तुम भी हिजड़े बन गए, तुम उठ करके मेरी रक्षा नहीं कर रहे हो। तार्जुन की गांधी लेकर के उठे, कहा अभी एक सेकंड के अंदर में इनको मार दूंगा, किंतु दूसरे ने कहा बैठो जैसा मैंने कहा था, उनको भी जबरदस्ती बैठा दिया। ये लोग भीतर में गड़बड़ करते रहे, भाई का आदेश उल्लंघन नहीं कर सकते, आज गुरु का भी आदेश को ताक पर रख करके गुरु के आदेश को नहीं मानते, भाई के आदेश को तो अलग है, भाई का शत्रु बन जाते हैं, थोड़े से धन के। पांडवों में भाई का स्नेह कैसा था, पत्नी के प्रति कितना प्यार था, ये महाभारत को देखने से बात होगा। यही हमारी भारतीय संस्कृति थी, आज क्रमश वो भारत संस्कृति उठ रही है, भाई भाई का शत्रु बन रहा है। स्त्री भी एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़ी हुई और पति हुआ भारतीय जनता पार्टी से, और एक नेशनल काउंसिल क्या है ना, उसके तरफ से उसका बेटा खड़ा गया, तीनों में महाभारत युद्ध मच गया। बदलाव उस जमाने में ये नहीं था, भाइयों में कितना स्नेह था, उन्होंने कहा और बैठ गए अपनी इच्छा के विपरीत, ऐसा ही होना चाहिए। आजकल तो माता पिता की बात भी नहीं सुनते, पैसा दे दो हमें तो अभी बंदूक चढ़ा और उसे मार देते हैं माता पिता। इसीलिए आज ये दुर्दशा देश की, कश्मीर की भी दुर्दशा इसीलिए है, हम अपनी प्राचीन संस्कृति को रोक चुके हैं। महाराज कर्ण तक कर्ण थे ना अंतिम राजा, कुछ कुछ अवशेष बचा था, अब तो कुछ भी नहीं था, इसलिए अर्जुन बैठे थे, नकुल सहदेव भी बैठे, कुछ किसी ने नहीं। अब देखा जब कोई कुछ नहीं कर रहा तो द्रौपदी जी होती थी, अब पुकारने, हे कृष्ण आप मेरी रक्षा करें, किंतु कृष्ण द्वारका में बैठे हुए द्रौपदी उसके रुक्मिणी के मन में पलंग पर बैठे छटपट कर रहे थे। रुक्मिणी पूछा आप छटपट क्यों कर रहे हैं, बड़े अशांत दिखते हैं, हमारे भक्त पर बड़ी चीज पड़ती है, तो चले जाइए, कैसे जाऊं, कुछ बंधन क्या? वो अभी अपने अंचल पर भरोसा करती है, दांत के तलों में दबा रखा है ऐसे दांत से अंचल को, तो ये जब छोड़ देगी हाथ उठा देगी और उसमें तो अभी द्रौपदी ने देखा जी अब तो मेरी रक्षा ही नहीं, तो जोर से बोलने लगती प्राणी मधुसूदन अब हमारा तुम्हारा ही भरोसा है, हे गोविंद राहुल अब तो जीवन है, जब ही बोला तो ही अंतर छूट गया, और कृष्ण पादुका भी नहीं ले सके, गरुड़ को भी नहीं बुलाया, मन की गति से मिनट में वहां पर पहुंच गए और साड़ी बंद करके बस हाथियों का बल तो खाते खाते घर भी बढ़ कर गया, कपड़ों की ढेर से अंबार से हाथ उसका दर्द होने लगा, अब नहीं खींच सका। दुर्योधन ने कहा आप थोड़ी सी बात में थोड़ा सा तो खींचो भैया, आप नहीं संभव होता, हार गया। अब वो साड़ी के बीच में नारी है कि वो नारी ही साड़ी है कि भगवान ही साड़ी बन गए, किसी को पता नहीं चला। ऐसे पुकार सुनते हैं किसका, जिन्होंने आत्मसमर्पण करते थे, भगवान का प्रेमी भक्त बन गया, प्रेमी से भी प्रेमात्म भक्त बन गया, उसकी पुकार सुन देखो एक सेकंड में और छठ पहुंच गए और उसकी रक्षा। यदि आप भी यही चाहते हो तो भगवान से गुरु से प्राप्त संबंध को स्मरण करके प्रभु को पुकारिए, तुम्हारा भाव दूर हो जाएगा, तुम्हारे सारे दुख सब दूर हो जाएंगे और भगवान के चरणों की खुशी और छाया में बड़े सुख और शांति से रहो। ये जगत में नहीं, ये तो जेल खाना है, बोलो वृंदावन में पहुंचा दीजिए। कृष्ण को मारने के लिए पूतना आई अपने बीच में स्थान लगाकर, क्योंकि भैया का बीज बनाया है इसलिए उसको माता की गति को लोग में देती, तो आप लोगों की क्या करेगा, आपके रूप को भी शोधन नहीं कर सकेगा। इसलिए ऐसे भाव रख करके भगवान इनको कहा जाता है प्रेम पर भाव, जिनके प्रेम के भगवान पसंद होते हैं। फिर द्वारका की जो रानियां हैं उनके माता पिता हैं, जदवंशी लोग हैं, उनके खास संबंधित, खास संबंधित हैं। अर्जुन से तो संबंध हुआ था, उनकी बुआ से के पुत्र ये है, वसुदेव जी की बहन है कुंती, उसके ये इनके संबंध तो है, किंतु दुर्गत कुछ संबंध। और रुक्मिणी सप्तभामा से, देवकी वसुदेव जी से एकदम निकट पर का संबंध, इसलिए इनको प्रेमात्म भक्त। ऐसे भक्तों में सबसे श्रेष्ठ उद्धव जो कृष्ण के कभी मंत्री बनते हैं, कभी सेनापति बनते हैं, कभी परामर्शदाता बनते हैं, कभी मंत्री बन जाते हैं, कभी पुरोहित बन जाते हैं, इस तरह से उनकी सब समय सेवा। रुक्मिणी के मन में भी कृष्ण जाते हैं तो उनको अपने साथ ले जाते हैं, ऐसे प्रेमी प्रेम पर भक्त है। इसीलिए कृष्ण ने, कृष्ण जहां भी अपना जाना होता है प्रतिनिधि के रूप में उद्धव जी को भेज, दूसरे को नहीं भेजेंगे, जहां खुद जाना है जब तो उद्धव तुम्हारे प्रतिनिधि बन रहे, क्योंकि कृष्ण के जैसे गुण है इनके भी गुण ऐसे, और देखने में कैसे हैं, सामली सूरत मोहनी मूरति, कृष्ण जैसे ही दिखती है। कृष्ण यदि अपना दुपट्टा दे दे, पीतांबर पहना दे और मुकुट लगा दे तो कोई अंतर नहीं चाहता, बड़ी मधु बोली बोलती है। तो और किसी को नहीं कहते, जैसे कृष्ण के बिना बड़े सुना हो, उनके माता पिता नंद और यशोदा नंदी हुए, ऐसा मत सोचेंगे। जो कृष्ण मथुरा के देवी वसुदेव के पुत्र हैं, उनके आंशिक पुत्र हैं, पूर्ण रूप से पुत्र किसके हैं, वसुदेव यशोदा के पूर्ण। कैसे मथुरा में जन्म लिया, बात तो ठीक है किंतु कैसे लिया, शंख चक्र गदा पद्मों के साथ, 16 वर्ष के नौ युवक के रूप में, सोने के मुकुट, सोने के हार लटक रहे और शंख चक्र गदा, ऐसा कोई जन्म लेता, इसलिए वहां पर प्रकट हुए जन्म नहीं, वहां पर जन्म लीला नहीं। नार कटना जानते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं तो माता के साथ में उनका कोई नार लगा रहता है, वो आप लोग समझे नार नहीं आकर के या चमारी पहले काटती, उसके लिए उसको कुछ पुरस्कार मिलता। इसके बाद में माता पिता शुद्ध होते थे, दान दक्षिणा देते। कितने दिनों के बाद में मैया और बच्चे को स्नान कराया जाता और उसके संस्कार सफल हुए। अब ये सब चीजें अब क्रमशः लुप्त होती जा रही, इसलिए मथुरा में नार नहीं कटी। वसुदेव जी कृष्ण को सूप में पटकने के उसमें रख करके यमुना को पार करके गोकुल में रखा है। और सुनते हैं जो वहां पर एक लड़की उत्पन्न हुई थी यशोदा जी को, जो माया उसको लेकर के, किंतु यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है, आंशिक सत्य। जिस समय देवकी वसुदेव जी को जेल खाने के अंदर में पुत्र पैदा हुआ, ठीक उसी समय में यशोदा देवी को भी पुत्र पैदा हुआ। यहाँ पर शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए, और वहां पर नंद भवन में क्या हुआ, छोटे से बच्चे जैसे साधारण रूप में बच्चे जन्म लेते हैं वैसे क्या क्या रोते हुए, और उसके बाद में एक छोटी सी लड़की पैदा, उसी का नाम ध्रुव माया। और कृष्ण ही पूर्ण वो कृष्ण है, भगवत्ता की चरम सीमा है, इनके अंश मथुरा वाले हैं ऐसा समझ। वे फिर देवकी के कहने से और उन्होंने छोटा सा रूप धारण कर लिया, उसको ले गए और वही कृष्ण में जाकर वहां पर मिल गए यशोदानंदन। ये सब बहुत रहस्य की बातें हैं, इसे संक्षेप में बताया। इसलिए यशोदा के और नंद बाबा के ही अपने मुंह हैं, उनका इनके प्रति इतना स्नेह है कि कृष्ण किसी कारण से ब्रज से जब चले आए तो ये विरह में संभल नहीं सके, बड़े आतुर हो गए और वे जैसे हो। और उनकी गोपियां और सखा लोग की क्या बात हुई, गईया अब घास नहीं चलती कृष्ण के लिए, बछड़े दूध नहीं पीते, हंडी बन बंसी बट इत्यादि सूख गए कृष्ण के दिन में, यमुना नदी भी उनके दिन में सूख गए, गोवर्धन पर्वत जमीन के अंदर में चले गए और टुकड़े टुकड़े हो आप देखेंगे। इस तरह से ब्रज की बड़ी दयनीय स्थिति हो गई, हो सकता है कि गाय बछड़े भी मरने लगे। कृष्ण ने सोचा ओहो गोपियां हमारे प्राण है, बाबा हमारे हमारी सेवा किया वो हमारे जीवन है, किंतु गोपियां हमारे जीवन की जीवन है, हमारे प्राणों की भी प्राण है, हमारे बिना वो जीवन धारण नहीं कर सकती है। गच्छो जाओ हमारे बिरली माता पिता को सांत्वना दो। और फिर बोले उन लोगों ने भी हमारे प्राणों से भी प्यारी हमारे जीवन के जीवन ये गोपियां, और उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, राधा चंद्र। उनमें भी सर्वश्रेष्ठ कौन है, राधा जी तो हमारा अंग ही है, हमारा प्राण ही, मैं शरीर हूं राधा जी देगा जाओ हमारे बिना वो किस प्रकार से जीवन धारण की है, ले जाओ उठाओ को गए उठाओ गए। किंतु देखो ये विचारणीय प्रश्न है, विचारणीय यह है कृष्ण जी उद्धव जी को ऊपर से मालूम होता है कि ब्रजवासियों को माता पिता को और गोपियों को सांत्वना देने के लिए देगा, कि भीतरी बात ये नहीं होती, कुछ बात और है। उन्होंने बहाना कुछ लगाया, बहाना क्या था, कृष्ण गोपियों गोपियां कृष्ण के विरह में मर रही है, विरहाग्नि में तड़प रही, और उधर में कृष्ण भी गोपियों के विरह में तड़प रहे हैं। गोपियां परस्पर बातचीत करके अपने भार को हल्का करने में डूबा, जैसे ललिता गिरी को समझा रही है, विशाखा गिरी समझा रही है, और को समझा रहे हैं, ब्राह्मण लोग नंद बाबा को समझा रहे हैं। इतने समझा तो कुछ हल्का होगा, किंतु कृष्ण को कौन समझाए, वो बड़े तरफ रहे और अपने दुखों को ये काफी नहीं सकते। कोई समझने वाला मथुरा में नहीं है, प्रेमी नहीं मथुरा में, तो सब तो जाता और उन्होंने क्षत्रिय लड़ने पीड़ने वाले लोग, इसलिए किससे करें, इसलिए मन महसूस करके रह जाते। उन्होंने सोचा कि जहां पर हमने प्रेम की पाठशाला में कुछ सीखा उसी जगह इनको भेज वृंदावन में, जहां पर की प्रोफेसर इत्यादि ललिता विशाखा है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और राधिका जी क्या है वो डायरेक्टर या प्रिंसिपल है, वहां पर उद्धव को भेजे और प्रेम अढ़ाई अक्षर का, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा से पंडित हो, जिसके अंदर में प्रेम नहीं है वो सारी विद्याओं को वेद को भी पढ़ करके भी त्याग कर देगा। इसलिए उद्धव को मैं भेजू जो वहां पर पाठशाला में भर्ती होकर के कुछ दिन वहां सीखे पढ़े, और इसके बाद में जब लौट करके आएगा तो हमारा दिल का दूध उस इसलिए भेजा। उद्धव जी गए एडमिशन लेने के लिए प्रार्थना की, किंतु हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने उनको अयोग्य समझ करके एडमिशन ले लिया, इसलिए बाहर ही गए, स्कूल फॉर्म तक गए, विद्यालय तक गए, भर्ती होकर के कुछ पाठ नहीं सीखा, इसलिए लौट कर गया। तो इसलिए वहां पर उद्धव जी ने क्या देखा क्या समझा उनकी बातें अब हम लोग कल कहेंगे। आज हम लोग प्रेम प्रेमात्म भक्तों की बात अर्थात पांडवों की बात और उनसे भी अधिक पढ़ करके उस जादुओं की बात हमने बतलाई, और गोपियां क्या है ये भक्त नहीं है, कृष्ण की वो कृपा पात्र नहीं है, कृष्ण पर कृपा करने वाली है ऐसा समझो। कृष्ण जब शोकातुर उठते हैं तो गोपियां उनको सांत्वना देती है, अपने चरणों की छाप महावती उनके सिर पर लगा देती है, इसलिए वो कृष्ण कहते हैं कि हमारे प्रेम की गुरु गोपियां हैं, इसलिए उद्धव जाओ कि पूरा एडमिशन मिला नहीं, कुछ दिन रहे और देखा वही आकर्षित कृष्ण से जो कहा है। अब कल से हम लोग दो दिन इसके ऊपर में व्याख्या करेंगे, आप लोग को मनोनिवेश के साथ में सुन करके समझ करके कृष्ण के प्रति ऐसी ही भक्ति करके आप लोगों का ये कृतार्थ हो, या तो अपना वक्तव्य समाप्त हो।
वृंदावन बिहारी लाल की।